मेरे प्यारे युवा साथियों नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे इस तथ्य पर बात करने जा रहा हूं कि भारत किस तरीके से दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। इस पर हम लोग कुछ बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं जो मैं आप सबको देना चाहूंगा। जो एक सूचना है वो हमारे अभी जो ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट आए थे उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपको हम लगातार स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे, यानी कि ऑडियो के फॉर्म में आपको साल भर तक लेक्चर्स दिए जाएंगे। लगभग 50 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी है और कल आपको पहला स्पेशल ऑडियो लेक्चर, स्पेशल ऑडियो गाइडेंस, जो भी आप कह सकें, भेजा जा चुका है। और इसके साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया था कि ऑफलाइन क्लासेस में जो आपको बातें बताई जा रही हैं उससे रिलेटेड कुछ आपको नोट्स भेजे जाएंगे, वे नोट्स भी कल भेजे जा चुके हैं। और इसके साथ ही साथ लास्ट डे पर जो फोटो सेशंस हुए थे उसके फोटो भी भेज दिए गए हैं। अब आपको करना यह है कि अपने मेल को आप ओपन करें, एक्सेस करें, उसमें सारी चीज़ें जो हमने भेजी हैं वो आपको मिल जाएंगी। प्लीज़ डू दिस। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। आपको ध्यान होगा कि लास्ट डे पर मैंने आप सबसे कहा था कि यहाँ से जाने के बाद आपको क्या क्या करना है, और मुझे विश्वास है कि वैसा वैसा आप कर भी रहे होंगे। इस बीच में जो मुझे आप सबके मेल मिल रहे हैं उससे डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। दोस्तों, अब एक दूसरी सूचना यह है कि खासकर मैं भोपाल में रहता हूँ और भोपाल के बहुत से स्टूडेंट्स के मेल आते रहते हैं, ऑफिस में उनके फ़ोन भी आते रहते हैं कि वो मुझसे मिल करके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में कुछ सलाह लेना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। इसके लिए अब हम लोगों ने एक तरीका निकाला है, तो जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड हों तो इसे ध्यान से सुन लें। लेकिन याद रखिएगा, ये केवल यूपीएससी यानी कि आईएएस के एग्ज़ाम के लिए ही है। आईएएस के लिए जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि दूसरे एग्जामिनेशन का कोई अनुभव मेरे पास नहीं है। इसीलिए मैं उन एग्जामिनेशन के बारे में किसी भी तरह की सलाह देने की स्थिति में नहीं होता हूं। आपको करना कुल मिलाकर यह है कि आपको एकेडमी में इसके लिए फ़ोन करना पड़ेगा। यदि आप मिलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एकेडमी में फ़ोन कीजिए। एकेडमी का जो फ़ोन नंबर है वह मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ोन नंबर है 9669990504, 9669990504। फ़ोन करने का जो टाइम है वो है सुबह 10:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक। आप इस पर कॉल करके अपना नाम लिखा सकते हैं और आपको बताना होगा कि इस तरीके से हम मिलना चाह रहे हैं। आप अपना नाम लिखा देंगे, आप अपना मोबाइल नंबर नोट करा देंगे, और जो मुलाकात का समय रखा गया है वो रखा गया है हर फ्राइडे को शाम को 5 बजे, 5 बजे से फिर आगे 6, 6:30 जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से उसे रखा जाएगा, लेकिन शुरुआत 5 बजे हो जाएगी। हमारा ऑफिस आपको कन्फर्म कर देगा कि हाँ ठीक है, आप आ जाइए, और कन्फर्म हो जाने के बाद फिर आप एग्जैक्ट टाइम पर फ्राइडे यानी इसी फ्राइडे से शाम को 5 बजे ऑफिस पहुँच जाएंगे। ऑफिस कहाँ है ये जब आप फ़ोन करेंगे तो उनसे पूछेंगे, वो आपको डिटेल समझा देंगे कि आपको कहाँ आना होगा। तो दोस्तों, इसकी हम लोगों ने शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि शायद स्टूडेंट के मन में जो जिज्ञासाएं हैं उन्हें हम लोग कुछ सॉल्व कर सकेंगे, और वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके इस बड़े यज्ञ में आप कह लीजिए कि छोटी सी आहुति एकेडमी की ओर से भी डल सकेगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक खबर जो आज के अखबारों में आप लोगों ने पढ़ी और कल न्यूज़ चैनल में भी आपने देखी होगी कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी नहीं रहे, संतूर वादक। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से पंडित शिव कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला है और मेरी पत्नी और मैंने उनको सुना भी है संतूर बजाते हुए। क्या संतूर बजाते थे, ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ ध्वनियों की तरंगें तैर रही हों। और देखने में वो इतने सीधे साधे सरल और प्यारे से व्यक्ति लगते थे, इतने प्यारे से व्यक्ति लगते थे कि लगता था कि इनको छू लिया जाए। इतने प्यारे सरल सहज व्यक्तित्व के मालिक, लगता था कि सच में इनका पूरा व्यक्तित्व ही संगीतमय हो गया है। हालांकि ईश्वर ने, ठीक है, उनको लंबी उम्र दी, 84 ईयर्स के वो रहे दोस्तों, लेकिन ऐसी महान हस्तियों का धरती से जाना एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर देता है, रिक्त स्थान तैयार कर देता है, ऐसा रिक्त स्थान जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा नहीं रहे, ये छोटी सी खबर है लेकिन बहुत बड़ी खबर। छोटी सी खबर इस मायने में कि केवल यह एक लाइन की खबर है, लेकिन बहुत बड़ी इस मायने में कि एक बहुत बड़े व्यक्ति का इस दुनिया से जाना हुआ है। न्यूज में कोई विशेष बात और पढ़ने के लिए सुनने के लिए नहीं थी, लेकिन न्यूज़पेपर में थी। मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं और वो कपड़ा क्षेत्र के संकट पर है। मुझे लगातार इस तरह के मेल मिलते रहते हैं कि सर, आप जो हमें क्लिपिंग्स प्रोवाइड करते हैं, प्रेस क्लिपिंग्स, हमें पता नहीं लगता कि उसमें से कौन इम्पॉर्टेंट है, कौन कम इम्पॉर्टेंट है, और अगर इम्पॉर्टेंट है तो उसमें हम किस तरीके से पढ़ें, उसे किस तरीके से उसमें से अपने लिए तथ्य निकालें। तो इसीलिए दोस्तों, मैंने अब इसकी शुरुआत की है, क्योंकि अगर ये समस्या है तो वास्तव में बहुत ही जेन्यून प्रॉब्लम है और इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए। प्लीज़ आप इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि भारत का जो वस्त्र उद्योग है वो बहुत बड़े वस्त्र उद्योगों में से है और यहाँ हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है, हमारा प्राचीनतम उद्योग है। वो अभी संकट में क्यों आया है, इसके बारे में इसमें दिया हुआ है, और अपने आप में मुझे लगता है कि ये कंप्लीट, एक तरह से संक्षिप्त नोट जैसा भी है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा जो कारण है जो हमारे वस्त्र उद्योग के सामने आज खड़ा है, वो है कपास की पैदावार। हमारे यहाँ जो कपास की पैदावार है वो हमारी जरूरत से काफी कम है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी। इसमें एक डेटा दिया हुआ है कि हमारे यहाँ 470 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है कपास का, जबकि विश्व में ये 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो हम लगभग आधे जैसी स्थिति में हैं। इसके बाद फिर बीटी कॉटन की बात कही गई है, पहले एक बहुत ही उन्नत बीज इस्तेमाल में किया गया बीटी कॉटन का, और उसको लेकर के फिर बाद में बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, क्योंकि ये माना गया कि इससे बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े फैल रहे हैं, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब हमारे पास उस तरह के उन्नत बीज अब नहीं है कि हम अपनी कपास की स्थानीय मांग को, यानी कि अपने स्वदेशी मांग को पूरा कर सके, और विश्व स्तर पर लगातार कपास की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। इसे आप पढ़िएगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि वस्त्र उद्योग के मामले में जो भारत के प्रतिस्पर्धी देश हैं वो हमारे पड़ोस के ही हैं, बांग्लादेश। आपको मालूम है कि विभाजन के बाद जो हमारे जूट वाला जो क्षेत्र था वेस्ट बंगाल में, आज भी जूट सबसे ज्यादा होता है, और जब विभाजन हुआ तो वो बांग्लादेश के हिस्से में भी काफी चला गया। तो बांग्लादेश आजकल वस्त्र उद्योग में बहुत अच्छा कर रहा है, घर घर में वस्त्र वहां तैयार किए जा रहे हैं, लगभग ये स्थिति आ गई है। बांग्लादेश है, वियतनाम है, चीन है और पाकिस्तान है। ये हमारे अभी सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बन गए हैं वर्ल्ड मार्केट में। तो ये कुछ तथ्य हैं, आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि तथ्य मालूम होने के बाद जब आप आंसर लिखते हैं तो डेफिनेटली उसका सही मायने में इम्पैक्ट पड़ता है, अदरवाइज ऊपर ऊपर की बात कहने से बात बनती नहीं है। दोस्तों, मैं आपको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अक्सर आपने सुना होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो विश्वसनीयता है उस पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, उसको लेकर के यह एक बहुत ही छोटा सा नोट जैसा एडिटोरियल कमेंट है। इसमें से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि आप ऐसा कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही सामान्य किस्म का ये टॉपिक है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और यह है कि भारत किस तरीके से $5 ट्रिलियन वाला वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं इसके बेस में भी एक आर्टिकल है जो दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद बेहतर होगा कि आप इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल लें, कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। दो तीन रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं। पहला रेफरेंस ये है कि जो IMF से शुरुआत हुई आर्टिकल के, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी अभी रिपोर्ट आई है 2022, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 2029 यानी कि 7 साल के बाद हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा, यानी कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है हम उसे प्राप्त कर लेंगे। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो उस समय जो रुपया का जो मूल्य होगा एक डॉलर के बदले में, वो 94 रुपीज हो जाएगा, मतलब काफी अब रुपया गिर जाएगा, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात कही थी। लेकिन एक और भी अर्थशास्त्री है, 2026 तक की स्थिति की बात कही है कि भारत अपने इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। इसके बाद इसमें एक अच्छी बात कही गई है, देखिए कि जो खासकर हम कहते हैं रुपया मजबूत क्यों हो गया, रुपया कमजोर क्यों हो गया, उसके बारे में एक सूत्र उन्होंने दिया है, और वो ये है कि जब किसी भी देश की जो मुद्रा हम कहते हैं कि वो मजबूत हो रही है, जैसे कल हमने बात की कि डॉलर विश्व स्तर पर मजबूत हो रहा है ना, कल हमने यही बात की थी, यानी कि केवल रुपया ही उसके तुलना में कमजोर हुआ है, बल्कि 6 और जो मुद्राएं हैं वो भी कमजोर हुई हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सिविल सर्विस के प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें उन्होंने दिया है बहुत अच्छा कि किसी भी देश की मुद्रा को मजबूत होने के लिए विश्व बाजार में उसका निर्यात उसके आयात से हमेशा अधिक होना चाहिए, यानी कि हम जितना निर्यात कर रहे हैं हमारा आयात उससे कम हो, यानी कि जो हमारा बैलेंस होगा, जो विदेशी व्यापार का जो संतुलन होगा वो हमारे पक्ष में होगा, जो कि अभी नहीं है। और नहीं होने का कारण जो है वो है कि हमें कच्चे तेल का सबसे ज्यादा आयात करना पड़ता है, मतलब हमारे जो वार्षिक आप कह लीजिए कि जो घाटा है वो अगर 192 बिलियन अमरीकी डॉलर है, दिया हुआ है इसमें। मैं उन तथ्यों की ओर ध्यान आपको दिला रहा हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको नोट करने चाहिए, कैसे आप इनका इस्तेमाल करेंगे। केवल पढ़ने से बात नहीं बनती है, सही तरीके से पढ़ने से बात बनती है, और केवल सही तरीके से पढ़ लेने से ही बात नहीं बनती है, आपको अपने लिए जो जरूरी चीजें लगती हैं उन्हें नोट भी करना होता है। जिसमें बकायदे दिया हुआ है कि 192 बिलियन अमरीकी डॉलर का जो हमारा घाटा है उसमें 100 बिलियन जो अमरीकी डॉलर है वो तो केवल कच्चे तेल के में चला जाता है, और अगर हम इसे पूरा कर लें तो कितना हमारा जो विदेशी व्यापार है हमारे पक्ष में हो जाएगा। तो दोस्तों इन बातों को लेकर के ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसे भी आप सब ध्यान से पढ़ें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगें उन्हें आप प्लीज नोट भी कर लें। तो दोस्तों ये थे मुख्य विषय के बारे में कुछ बातें, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, गीता कुमारी उत्तर प्रदेश से, शुभम ठाकरे सिवनी मध्य प्रदेश से, भरत क्षीर सागर महाराष्ट्र से, और नांदी रावल अहमदाबाद से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को दोस्तों यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।